नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण संपन्नता विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 59,000 से अधिक विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। बिहार की आर्थिक स्थिति में तेजी से हो रहा है सुधार। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले एक दशक में 3.5 गुना बढ़ी अर्थव्यवस्था। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के मौसम में तेजी से हुआ बदलाव। राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण संपन्नता विषय पर एक दिन के पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में सभी केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। वेबिनार में वर्ष 2025 की बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नीति तैयार करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। वेबिनार में कृषि विकास और ग्रामीण संपन्नता के बारे में विशेष चर्चा होगी। इससे बजट की परिकल्पना को साकार करने में सामूहिक दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस कार्यक्रम में अपने विचार रखेंगे। वेबिनार का उद्देश्य निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विषय विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों को एक साथ जोड़ना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण में उत्तीर्ण 59,028 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। पटना के संवाद भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। विशिष्ट शिक्षकों में 55,845 प्रारंभिक शिक्षक, 2,532 माध्यमिक शिक्षक और 651 उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार समेत कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। प्रदेश की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में बिहार दूसरे स्थान पर है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट सत्र के प्रथम दिन कल राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए यह जानकारी दी है। आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान बिहार की विकास दर 14.5% रही है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 12.8% बढ़कर 66,828 हो गई है।
ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ का है और स्थिर मूल्य पर 2011-12 4,64,540 करोड़ का अनुमानित है। वर्ष 2023-24 के सकल घरेलू उत्पाद में गत वर्ष की अपेक्षा वर्तमान मूल्य पर 14.5% और स्थिर मूल्य पर 9.2% की वृद्धि हुई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान में बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार 3.5 गुना बढ़ गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार का सबसे धनी जिला पटना है। जिले में सालाना प्रति व्यक्ति आय 1,21,396 रुपए है। इस सूची में बेगूसराय दूसरे और मुंगेर तीसरे स्थान पर है। सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में शिवहर सबसे पीछे है। जिले के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय 19,561 रुपए है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कहा है कि आईआरसीटीसी में अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व रेल मंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद सहित कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इस मामले में लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत कई आरोपी हैं। न्यायालय ने सीबीआई की दलील सुनने के बाद इस मामले से संबंधित दस्तावेजों की सूची पेश करने को कहा है। यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों का परिचालन अनुबंध एक निजी फर्म को देने में अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट संबंधी नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाले पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण पत्र होगा। पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन को क्रियान्वित करने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। नए नियमों के अनुसार जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारी, नगर निगम तथा जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। प्रदेश में बनाए जा रहे पंचायत भवनों के निर्माण की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के लिए प्रमंडल क्षेत्र स्तर पर इंजीनियरों की टीम गठित की जाएगी। यह टीम पंचायत भवनों की निर्माण गुणवत्ता की जांच कर अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने पंचायत भवनों की समीक्षा के बाद ये निर्देश दिए हैं। भोजपुर जिले के शाहपुर में गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्र में प्राकृतिक तेल की प्राप्ति के लिए खुदाई की जा रही है। खनन करने वाली कंपनी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत खनन का कार्य कर रही है। गौरतलब है कि यहां लगभग 3 वर्ष पूर्व 3 किलोमीटर गहराई तक खुदाई की गई थी। इस खुदाई में प्राकृतिक तेल और गैस के बड़े भंडार का पता चला था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना।
आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newzoneair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @airnews_patna से प्राप्त की जा सकती हैं।
अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है। सुबह से ही अधिकतर भागों में तेज हवा चलने और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह राजधानी पटना में बादल छाने के साथ ही तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और नवादा जिलों में कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है।
अगले 48 घंटों में राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, गया एवं नवादा जिलों के एक या दो स्थानों में मेघार्जन या वज्रपात एवं तेज हवा चलने की संभावना है।
इधर मौसम विभाग ने 1 से 2 घंटों के दौरान पटना और वैशाली जिले में तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मुस्लिम समुदाय के पवित्र महीने रमजान की शुरुआत कल 2 मार्च से होगी। फुलवारी शरीफ स्थित इमारत शरिया, बिहार, ओडिशा, झारखंड के काजी शरीयत मौलाना मोहम्मद अंजार आलम कासमी ने बताया कि कल चांद नहीं देखा गया, इसलिए आज शाबान की 30 तारीख है। कल पहला रोजा होगा।
28 फरवरी को रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया और न मुल्क भर में कहीं से चांद देखे जाने की कोई खबर मौसूल हुई। इस एतबार से 30 की रुयत का एतबार करते हुए 2 मार्च 2025 रोज इतवार को रमजानुल मुबारक की पहली तारीख करार पाई। तमाम मुसलमान 2 मार्च 2025 रोज इतवार से रोजा रखने का एहतमाम करें और 1 मार्च से तरावीह का भी एहतमाम करें।
इधर रमजान को लेकर बाजार में चहल पहल बढ़ गई है और लोग खरीदारी में व्यस्त देखे जा रहे हैं। होली के त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे ने प्रमुख मार्गों पर 48 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। ये रेलगाड़ियां मुंबई, पुणे जैसे प्रमुख शहरों से दानापुर, समस्तीपुर समेत अन्य गंतव्य स्थानों के बीच चलाई जाएंगी। इधर पूर्व मध्य रेलवे की ओर से आज से राजेंद्र नगर और दानापुर स्टेशन से नई दिल्ली के लिए होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पटना, गया और मुजफ्फरपुर के बीच भी एक दर्जन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि जरूरत के अनुसार ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। आसनसोल मंडल के झाझा सीतारामपुर रेलखंड के बीच ट्रैफिक ब्लॉक के कारण कल पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन के परिचालन समय में बदलाव किया गया है। ये ट्रेन पटना से पूर्वाह्न 11:55 पर रवाना होगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने होली पर्व को लेकर 10 से 18 मार्च तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। मुख्यालय की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष परिस्थिति में दिए जाने वाले अवकाश को इससे अलग रखा गया है। जहानाबाद में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन की ओर से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कल पटना से आई विशेष टीम की निगरानी में पुलिस लाइन और समाहरणालय के आसपास एंटीवायरल छिड़काव कराया गया। वहीं नजदीकी मुर्गी फार्म से मुर्गियों के जांच नमूने भी लिए गए हैं। बिहार पहली बार एशियाई रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। रग्बी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच इस संबंध में पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में कल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। राजगीर में 9 और 10 अगस्त को आयोजित होने वाली इस चैंपियनशिप में भारत सहित विभिन्न देशों की 8-8 महिला और पुरुष टीमें भाग लेंगी। सीवान में आयोजित 22वीं बिहार राज्य सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब पटना ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में पटना ने सीतामढ़ी को 17-13 अंकों से पराजित कर दिया। इधर 52वीं पटना गोल्फ क्लब ओपन चैंपियनशिप शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता में सेना के अधिकारी समेत देश भर के 250 से अधिक गोल्फर भाग ले रहे हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 2 दशक में बिहार का राजस्व 15 गुना बढ़ा। अखबार लिखता है, विकास दर 14.5% प्रति व्यक्ति आमदनी भी बढ़ी। दैनिक जागरण ने राज्यपाल के अभिभाषण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख को सरकारी नौकरी, राज्यपाल ने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को किया संबोधित। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, ईपीएफओ ट्रस्टी की बैठक में अहम फैसला, 7 करोड़ कर्मियों को पीएफ पर 8.25% ब्याज मिलता रहेगा। प्रभात खबर लिखता है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आयात शुल्क लगाने की घोषणा से शेयर बाजार में घबराहट, सेंसेक्स 1414 अंक लुढ़का, साल की सबसे बड़ी गिरावट। इसी खबर पर राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, शेयर बाजार में ब्लैक फ्राइडे। आज अखबार ने आईसीसी क्रिकेट ट्रॉफी की खबर को अपनी प्रमुख लीड बनाते हुए लिखा है, बारिश में धुला अफगानिस्तान से मैच, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण संपन्नता विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 59,000 से अधिक विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। बिहार की आर्थिक स्थिति में तेजी से हो रहा है सुधार। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 1 दशक में 3.5 गुना बढ़ी अर्थव्यवस्था। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के मौसम में तेजी से हुआ बदलाव। राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हुई बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।